भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय संख्या 2। अध्याय का नाम है असुर राज हिरण्यकश्यपु और श्लोक संख्या है 23। यथाम्भसा प्रचलता तर्वोऽपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलतीव भू। यथाम्भसा प्रचलता तर्वोऽपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलतीव भू। यथाम्भसा प्रचलता तर्वोऽपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलतीव भू। अनुवाद तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ यथा जिस तरह अंबसा जल द्वारा प्रचलता गतिमान दरवाह वृक्ष नदी के तट के अपि भी चला गतिमान इव मानो चक्षुषा आंख से भ्राम्यमाणेन गतिमान दृश्यते देखा जाता है चलती चलती हुई गतिमान एव मानो भू धरती। अनुवाद जल की गति के कारण नदी के तटवर्ती वृक्ष जल में प्रतिबिंबित होकर चलते प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार जब आंखें किसी मानसिक असंतुलन के कारण चलती रहती हैं तो धरती स्थल भी घूमती प्रतीत होती है। तात्पर्य कभी कभी मानसिक असंतुलन के कारण धरती घूमती प्रतीत होती है। उदाहरणार्थ एक शराबी या हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति कभी कभी अनुभव करता है कि धरती गतिमान है। इसी प्रकार प्रवाहित नदी में वृक्षों के प्रतिबिंब भी चलते प्रतीत होते हैं। ये सब माया के कार्य हैं। वस्तुतः जीव नहीं चलता स्थानुड़ अचलो अयम। जीव का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है किंतु नश्वर सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों के कारण जीव एक स्थान से दूसरे को गति करता या सदा के लिए मृत प्रतीत होता है। जैसा कि महान बंगाली वैष्णव कवि जगदानंद पंडित ने कहा है पिशाचे पहिले ये न मति क्षण है मायाग्रस्त जीवर है से भाव उदय। प्रेम वृत्त के इस कथनानुसार जब जीव प्रकृति द्वारा बद्ध होता है तो वह ऐसे व्यक्ति के समान होता है जैसे जिसे भूत प्रेत सताते हैं। अतः मनुष्य को आत्मा के स्थिर पद को समझना चाहिए और जानना चाहिए कि किस तरह प्रकृति की लहरों द्वारा शोक तथा लालसा के अंतर्गत विभिन्न शरीरों तथा विभिन्न पदों तक ले जाया जाता है। मनुष्य के जीवन की सफलता तब मिलती है जब वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझता है और प्रकृति द्वारा उत्पन्न दशाओं से विचलित नहीं होता। प्रकृति की ये माणानी गुणे कर्माणी सर्वशा। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस भागवत कक्षा में। तो इस अध्याय का नाम है असुराज हिरण्यकश्यपु, और आज का ये श्लोक भी श्री हिरण्यकश्यपु उवाच, श्लोक संख्या 20 से श्री हिरण्यकश्यपु उवाच चल रहा है। हिरण्यकश्यपु उवाच नहीं लिखा गया, श्री हिरण्यकश्यपु उवाच, यानी कि विशेष व्यक्ति हैं जो कि श्लोक को बोल रहे हैं। कितने भक्त लोग एक असुर की वाणी को सुनना चाहेंगे। हिरण्यकश्यपु उवाच, श्री हिरण्यकश्यपु उवाच। एक बार श्री प्रभुपाद जी नरसिंह जयंती में भगवान नरसिंह के आविर्भाव पे प्रकटे पे लेक्चर दे रहे थे, और भगवान नरसिंह की जय के बाद उन्होंने बोला ऑल ग्लोरीज टू हिरण्यकश्यपु। उन्होंने हिरण्यकश्यपु की भी जय बोली। उन्होंने बोला कि हिरण्यकश्यपु ही माध्यम बने, कारण बने भगवान नरसिंह के अवतार के, तो इनकी जय हो। और वास्तव में हिरण्यकश्यपु बहुत विशेष व्यक्ति हैं। तो हिरण्यकश्यपु पूरी योजना बना ली है कि उसने कैसे विष्णु का वध करना है, कैसे ब्राह्मण संस्कृति का नाश करना है। इसके बाद वो अपनी माँ दिति, अपने भाई की पत्नी और अपने भतीजों को उसने इकट्ठा किया और उनको सांत्वना दे रहा है। और सांत्वना सेंटिमेंटल होकर नहीं, शास्त्रों के आधार पर बड़ा गूढ़ ज्ञान दे रहा है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। हिरण्यकश्यपु जो दिति को ज्ञान दे रहा है वो वही ज्ञान है जो भगवान कपिल ने माता दहीहूति को दिया, वो वही ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वो वही ज्ञान है जो कृष्ण ने उद्धव को दिया, जो मैत्रेय मुनि ने विदुर को दिया। ज्ञान बिल्कुल वही है। आगे हम श्लोक देखेंगे, आप करेंगे वाह क्या एग्जाम्पल दिया हिरण्यकश्यपु ने, एकदम सांख्य योग जाकर डिटेल में। लेकिन फिर हम देखते हैं एक असुर और एक भक्त में फिर अंतर क्या होगा। हिरण्यकश्यपु ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन अगले अध्याय में देखेंगे हिरण्यकश्यपु तैयारी कर रहा है, तपस्या कर रहा है भगवान का वध करने के लिए। तो बड़ी बड़ी बातें करना कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, उपलब्धि है हमारा आचरण, हमारे इंटेंशंस। हमारे इंटेंशंस क्या है, हमारा मोटिव क्या है। हिरण्यकश्यपु का मोटिव था एक राजनीतिक मोटिव था, किसी ढंग से इनको शांत करके अब मैं तपस्या के लिए निकलूं और विष्णु का वध करूं। हिरण्यकश्यपु वेद के बारे में तो बातें कर रहा है, लेकिन वो वेदों का असली उद्देश्य यानी कि वेदांत नहीं जानता कि वेदों का असली उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण को जानना, उनसे प्रेम करना। वेद की बातें करके ही वो वेदों के रचयिता श्री कृष्ण का वध, विष्णु का वध करना चाह रहा है। तो ये असुर स्वभाव है। तो हिरण्यकश्यपु सांत्वना दे रहे हैं अपने भतीजों को, माँ को और भाई की पत्नी को, और बता रहे हैं आत्मा, और आज आत्मा और प्रकृति के विषय में बता रहे हैं। यथाम वसा प्रचलता तर्वो अपि जला इव, जल की गति करण यथाम वसा, जिस तरह जल द्वारा प्रचलता, जल जैसे प्रचलित है, बह रहा है, तर्वो अपि चला इव, जो पेड़ उस नदी के तट पे होगा वो भी चलता हुआ प्रतीत होगा। पेड़ स्थित है लेकिन क्योंकि नदी चल रही है तो इसलिए उसकी जो परछाई से पेड़ भी चलता हुआ प्रतीत होगा। दूसरा एग्जाम्पल, चक्षुषा भ्रामे माणे न दृश्यते चलति हुआ, मानसिक असंतुलन के कारण किसी व्यक्ति को पृथ्वी चलते हुए प्रतीत होती है, पृथ्वी स्थिर है। उसी ढंग से अगले श्लोक में बताएगा कि उसी ढंग से, इसी तरह से मेरी भद्र माता जब प्रकृति के गुणों के द्वारा मन विचलित होता है, भटकता है, तब जीव चाहे कितना ही सूक्ष्म क्यों ना हो तथा स्थूल शरीरों की विभिन्न अवस्थाओं से मुक्त हो यही सोचता है कि वह एक स्थिति से दूसरी में परिवर्तित हो गया है। यानी कि जीव स्थिर है, जिस प्रकार से नदी के तट पर एक पेड़ अपने प्रतिबिंब द्वारा चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि नदी चल रही है, इसी प्रकार जीव स्थिर है लेकिन क्योंकि प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा मन विचलित है, मन चंचल है, इसलिए जीव को ऐसा लगता है कि वो अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रहा है। समझे एग्जाम्पल को? नदी के तट पर नदी बह रही है और पेड़ नदी के तट पे है, पेड़ स्थिर है, नदी बह रही है, जब पेड़ की परछाई हम नदी में देखते हैं तो हमें लगता है कि पेड़ चल रहा है। उसी ढंग से जीव स्थिर है लेकिन जब जीव अपने आप को मन समझता है तो मन को जीव की आत्मा का विकृत छाया बताया गया है। भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर महाराज कहते हैं जो माइंड है वो आत्मा का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, विकृत छाया है। तो जब जीव अपने आप को मन समझता है तो मन विचलित है, जीव आत्मा स्थिर है। जीवात्मा का गुण प्रभुपाद ने बताया स्थानुर अचलन। इसमें आचार्यगण हमारे बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद, स्थानुर और अचलन दोनों पर्यायवाची हैं और इसका अर्थ है जिसमें स्थिरता हो, स्टेबिलिटी हो। बलदेव विद्याभूषण जी बताते हैं कि जिसमें अपने गुणों में स्थिरता हो, उसके गुणों में कभी विकार ना आता हो, उसके चरित्र में कभी विकार ना आता हो। तो जीव के गुणों में जीवात्मा सच्चित आनंद है, उसमें कोई विकार नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता, वो स्थिर है। लेकिन फिर भी हम सबको ऐसा लगता है हम बदल रहे हैं, हमें लगता नहीं ऐसा कि हम बदल रहे हैं, हम पहले छोटे बच्चे थे, फिर बड़े थे, अब क्या हो गए हैं, शरीर बदल रहा है, यानी मैं बदल रहा हूँ, है ना। हम कभी उदास होते हैं, कभी खुश होते हैं, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इस भौतिक जगत को भोगना चाहते हैं, हम हैं दास नहीं भोक्ता बनना चाहते हैं। तो इस झूठे अहंकार के कारण भगवान ने हमारे झूठे सुख के लिए ये संसार की रचना की है। फॉल्स ईगो के कारण, हमारे फॉल्स एंजॉयमेंट के लिए ये भौतिक जगत की रचना की गई है। और अगर हम इस संसार में भोक्ता का भाव चाहते हैं कि हाँ मैं एंजॉयर हूँ, तो हमें अपनी पहचान इस शरीर और मन से करनी होगी, तभी हम भोग कर सकते हैं। ये फॉल्स ईगो के बिना हम भोक्ता का भाव ला ही नहीं सकते, तभी वो फॉल्स ईगो है। तो हम अपनी पहचान मन से करते हैं, मेरा मन उदास है, वास्तव में मन उदास है, और मैं सोचता हूँ मैं उदास हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो यानी कि मन खुश है तो मन हम खुश हैं, है ना। यानी कि जब हमारा मनोरंजन हो जाए, हमारे मन की बात कोई कह दे तो हम खुश हो जाते हैं, है ना। मन को गुलाब जामुन खाना अच्छा लगता है, गुलाब जामुन खा के हम खुश हो गए, लेकिन जीवात्मा का गुलाब जामुन से कुछ लेना देना नहीं है। उदास है क्यों? सबको गुलाब जामुन मिल गया, मुझे उदास नहीं मिला, मैं रो रहा हूँ, अरे मैं उदास हूँ, लेकिन जीवात्मा का इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो हम झूठे अहंकार के कारण मनोरंजन को आत्मा का आनंद के समान समझते हैं, और इस तरह से कभी सुखी होते हैं और कभी दुखी होते हैं। और कई बार हम समझते हैं, हम देखते हैं कि छोटा बच्चा था, हम कितनी अपनी पहचान बदल चुके हैं, हमारी आइडेंटिटी कार्ड कितने बदल चुके हैं। ऐसा है कि एक बार आइडेंटिटी कार्ड किसको मिल गया वही चलता आ रहा है, स्कूल में कोई आई कार्ड हो गया, कॉलेज में कोई आई कार्ड हो गया, कंपनी ज्वाइन करते हैं उसमें कोई आई कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, कितनी हमारी पहचान अलग अलग है। और हमारी पहचान बदलती जाती है, हर 5 साल के बाद अपने आप को शीशे में देखते हैं, एक बदला हुआ चेहरा नजर हमें आता है ना। तो हमारी पहचान बदलती जा रही है, और हम अक्सर लोग कहते हैं कायाकल्प हो गई, है ना। आजकल वो स्लिमिंग सेंटर्स में जाते हैं, वो अपनी पहचान बदल जाते हैं, बिफोर एंड आफ्टर, पहले थे 80 किलो के, बाहर निकले 50 किलो के, है ना, कायाकल्प हो गई। तो हो गई कायाकल्प वास्तव में, लेकिन जब हम अपने आपको मन समझते हैं, काया ही कल्प नहीं हो रही, कल्प भी काया हो रही है, हर एक कल्प में नई नई काया मिल रही है, समझ रहे, हर कल्प में एक नई काया, ब्रह्मा जी हर दिन में नई नई पहचान, नई पहचान है। अगर कोई पूछे आपकी, जैसे पिछले दिन नवयुग में स्वामी महाराज आए थे लास्ट वीक में, किसी ने बोला था हमारे भक्त ने कि कहाँ से हो, बोले पीछे से मैं पाकिस्तान से हूँ, है ना, किसी ने बोला था ना, हाँ प्रतीक प्रभु ने बोला था हम पीछे से पाकिस्तान से हैं। तो आपकी पहचान से पूछा है आपके कहाँ से हो, हाँ जी पीछे से हम पाकिस्तान से हैं। समझो एक ऐसी मशीन हो जिसमें हमें अपने पिछले जन्म के बारे में भी जान सके, बोले आप बताओ और पीछे से कहाँ से हैं, मैं पीछे से लाहौर से था, थोड़ा और पीछे जाओ और कहाँ से हैं, मैं पेरिस की एक लड़की था, थोड़ा और पीछे जाओ मैं कुत्ता था, थोड़ा और पीछे जाओ मैं सुअर था, थोड़ा और पीछे जाओ मैं बिल्ली था, और पीछे जाओ मैं चूहा था, मच्छर था, छिपकली था, सांप था, पेड़ था, मछली था, ऑक्टोपस था, पैरामिशियम था, अमीबा था, बैक्टीरिया था, जर्म था, क्या था कुछ पता नहीं। आप सोचिए इन सब योनियों से हम भटक चुके हैं, सब योनियों से, और हमें लग रहा है कि मैं भटक चुका हूँ, क्योंकि इसी शरीर में हम देख सकते हैं, हमें लगता है कि हम कितना, आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ, हम बोलते हैं मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बहुत कुछ देखा है, बाल ऐसे सफ़ेद नहीं किए, है ना, अपनी पहचान। लेकिन जीवात्मा में कोई परिवर्तन नहीं आया, जीवात्मा स्थिर है, क्योंकि हम अपनी पहचान इस मन और शरीर से कर रहे हैं, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि हम चल रहे हैं। और जब चलता हुआ व्यक्ति अपने को स्थिर ना हो तो बड़ी एंग्जाइटी है, बड़े चेंजेस हो रहे हैं, हमें मालूम नहीं अगला क्या होने वाला है, एक ही सेकंड में पूरा जीवन बदल जाता है, एक एक क्षण में। अभी कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, वो बता रहे थे उनका जो बेटा है अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट कंपनी का CEO है, CEO बड़ा चीफ पहुंच गया, बहुत प्रगति की उसने, बहुत तरक्की की, बहुत होशियार व्यक्ति, बहुत धन कमा रहा है, बहुत नामी व्यक्ति, अचानक एक पार्टी में था, अचानक वो नीचे गिर गया, कोलैप्स हो गया, मालूम चला पेट ब्रेन हेमरेज हो गया, अब वो बिल्कुल अपंग बना हुआ है, वो हिल नहीं सकता, आंखें नहीं पिछड़ सकता, एक आंख खुली रहती है, खा नहीं सकता, उसमें एक थैली लगाई हुई है, कुछ खाना तो पेट के अंदर डालना पड़ता है, बिल्कुल अपंग ऐसे पड़ा है। एक एक क्षण में पूरी स्थिति बदल गई, एक एक क्षण में। और जो हमारे जीवन बदलाव होते हैं वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उनकी हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, उनको हम रोक नहीं सकते, और बदलाव होते रहते हैं, बहती नदी की तरह, नदी कभी कांस्टेंट नहीं होगी। तो कैसे, तभी हम हमेशा विचलित रहते हैं, तभी हमेशा भयभीत रहते हैं, असुरक्षित रहते हैं, क्योंकि हम अपनी पहचान इस शरीर से कर रहे हैं, इस मन से कर रहे हैं। तो हिरण्यकश्यपु अपने माँ को समझा रहा है, घबराओ मत, आप इससे अलग हो, इन सब से अलग हो। हम सोचते हैं कि हम बदल रहे हैं, हम सोचते हैं हम अलग अलग योनि में जा रहे हैं, हम किसी योनि में नहीं जा रहे। वास्तव में मन हमें अलग अलग शरीरों में ले जा रहा है। हमारे निकट कुछ संबंधी हैं, याद करिए, जो कि अब शरीर छोड़ चुके हैं, कहाँ गए हैं, कहाँ गए, वो चेहरा कहाँ गया। अजीब सी बात है, अभी तक थे माता पिता दादा दादी, अचानक गायब हो गए। अरे जिनके बिना मैं रह नहीं सकता था वो गायब हो गए। मैं सोच भी नहीं सकता था जिसके बिना मेरा जीवन होगा, वो अचानक गायब, कहाँ गए। सोचिए कितना कितना भयभीत हो जाएगा व्यक्ति। और इस स्थिति का सामना हर किसी को करना पड़ेगा। हर किसी को एक दिन अपने माता पिता के उनके शरीर छोड़कर जाएंगे, कहाँ गए, एकदम सारी परिस्थिति बदल जाती है। और ये सोचकर हमें डर लगता है, अरे ऐसा होगा तो क्या होगा, मैं कहाँ हूँ, मेरे प्रिय कोई चला जाएगा फिर क्या होगा, मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, अभी मैं जवान हूँ, बुढ़ापे में मेरा क्या होगा। हम कितने भयभीत रहते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे में बदलाव आ जाते हैं। लेकिन हिरण्यकश्यपु समझा रहे हैं हमारे में कोई बदलाव नहीं आता। हम स्थानु अचलो अयम, हम स्थानु हैं, हमें कोई विकार नहीं आता, मन में सारे विकार आते हैं। इसलिए भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में बताया गया है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभ्यो अपि दृष्टो त्वन स्तन्यो तत्व दर्श भी। बहुत अच्छा श्लोक है ये हम सबके लिए और हमें समझना चाहिए। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। तत्व दर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायी तो नहीं होता, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। यानी कि जो संत व्यक्ति हैं, तत्वदर्शी हैं, उन्होंने भौतिक प्रकृति असत और आध्यात्मिक प्रकृति सत को अच्छे ढंग से अध्ययन किया है। क्या कह रहे हैं, नासतो विद्यते भावो, जो असत है, असत यानी कि टेम्परेरी है, उसका कोई भाव नहीं है, उसका कोई स्थायित्व नहीं है। सत शब्द अस्तु धातु से आता है जिसका मतलब है एग्जिस्टेंस, है। असत मतलब जो कि टेम्परेरी है, कभी है फिर अप्रकट हो जाएगी, तो उसका कोई भाव नहीं है, उसका कोई स्थायित्व नहीं है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ना असतो विद्यते भावो, ना अभावो विद्यते सत। जो सत है, जो ट्रुथ है, जो सत्य है, जो हमेशा विद्यमान रहता है, अभाव, उसमें कोई अभाव नहीं है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, वो हमेशा रहेगा। जो ना असतो विद्यते भावो, जो असत है, टेम्परेरी है, उसका कोई भाव नहीं है, स्थायित्व नहीं है, और जो स्थाई है उसमें कोई असत, वो उसका कोई अभाव नहीं है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। समझे थोड़ा। तो हमें इन दोनों की प्रकृति को समझना चाहिए और हम समझ जाएंगे तो विचलित नहीं होंगे। समझिए श्लोक थोड़ा। तो एक बारी एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ ट्रेन में जा रहे थे, गर्मी का मौसम, बहुत गर्मी, और खचाखच गाड़ी का डब्बा भरा हुआ और पंखा भी नहीं चल रहा, बुरी हालत, बुरी हालत, पसीने पसीने निकल रहे हैं, बदबू और पूरा भरा हुआ। उसमें तभी से एक वेंडर आता है, पंखा 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 लो, पंखा लो, पंखा लो, ठंडी ठंडी हवा, पंखा लो। तो बेचारा एक पति पत्नी दो बच्चे, बुरी हालत हो रही है। बोले भैया कैसा दिया पंखा, बोले 2 रुपए के 4, 2 रुपए के 4, 2 रुपए के 4। अरे वाह, 2 रुपए में सारी समस्या का समाधान, पूरे परिवार का। फटाफट 2 रुपए लेता है, 4 पंखे लेता है, वो 4 पंखे लेके जैसे करना शुरू करता है पंखा टूट जाता है। अरे यहाँ पे बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ बना दिया, क्या है पंखा दिया, लेते टूट गया। अरे कैसे टूट गया, कहे टूट गया। बोले क्या किया था, यूं किया था। कहते यूं किया तभी तो पंखा टूट गया। कहे और कैसे पंखा करेंगे, तरीका होता है इसका, क्या तरीका है, बोले इसको ऐसे पकड़ो, यूं करो। बोले ऐसा करो, टूटेगा ही नहीं कभी पंखा, टूटेगा, इसको यूं करो, यूं हिलाओ, हवा भी आएगी, पंखा भी रहेगा। बोले क्या तरीका है, बोले कि 98 में और क्या मिलेगा। 98 में क्या चाहते हो, एयर कंडीशनर चाहते हो, यही तो मिलेगा। तो क्या, ना असतो विद्यते भाव, उसका भाव क्या, ठंडी, असत है, टेम्परेरी, पंखा टूट गया, श्री राधा राधिका रमन जी के जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलराम। तो ये भौतिक जगत भी ऐसे टेम्परेरी है और ये तुरंत चेंज हो जाएगा, गिर गया। बोलते नहीं नहीं नहीं, हम क्या चाहते हैं, ये स्थिर रहे। तो स्थिर रहने के लिए हमें हिलना पड़ेगा। हम यही तो कर रहे हैं, आत्मा स्थिर है लेकिन अपने आप को चलायमान मान रही है, क्योंकि जो परिस्थितियां ये स्थिर हो जाए, ये नदी की जो लहरें हैं शांत हो जाए। हम अपने आप को बदलते रहते हैं, हर परिस्थिति के हर चेंज हो रहा है लाइफ में उसमें बदलते रहते हैं, लेकिन इसको हम महत्व ना दें। ये गिरना है गिर जाएगा, लेकिन हमसे बहुत कुछ आशा रख रहे हैं कि आठ आने का पंखा है, मेरी सारी गर्मी की समस्याओं का समाधान कर देगा। और इसको लेकर हमें पकड़े, हमें धोखा मिला। बोले अगर स्थिरता चाहते हो इसमें, अपने आप को हिलाओ। और अपने आप को हम हिलाते रह जाते हैं, हिलाते रह जाते हैं, हिलाते रह जाते हैं। कितने योनि पर योनि अपने आप को हिलाए जा रहे हैं, इसलिए हमेशा दुखी हैं। प्रभुपाद कहते हैं एकदम कुंठा में भरे पड़े हैं हर जीव। तो कैसे हम इस जो चलायमान जगत में स्थिरता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हर व्यक्ति के जीवन में चेंज आ रहा है, उसके शरीर में चेंज आ रहा है। हम देखते हैं हमारे बाल सफेद हो रहे हैं, हम क्या करते हैं, उसको डाई कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, है ना। चेहरे पे रिंकल्स पड़ रहे हैं, फेस लिफ्ट करा लेते हैं, थोड़ा शरीर ढीला पड़ रहा है और मसाज वसाज दे के प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं। मन में विकार आ रहा है, भौतिक जगत में हमारे घर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, हमारे जहाँ बिजनेस करते हैं वहाँ कुछ चेंजेस आ रहे हैं, समाज में बदलाव आ रहे हैं। इन सारे बदलावों का प्रेशर हमारे ऊपर इतना पड़ता है, कहाँ कहाँ हम अपने आप को बदले। इसलिए आजकल इतना डिप्रेशन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे बताया था, जो ये चेंज है ये अनस्टॉपेबल है, इनको कोई रोक नहीं सकता। अनप्रिडिक्टेबल है, इसको कोई अनुमान नहीं लगा सकता। और अनकंट्रोलेबल है, हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो क्या करेंगे? तो इसलिए इस श्लोक को अगर हम सही ढंग से समझ जाएंगे, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। सत क्या है, असत क्या है, एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, रिलेटिव ट्रुथ क्या है, परम सत्य क्या है, सापेक्ष सत्य क्या है। ये भौतिक जगत इल्यूजन है, क्या स्टेटमेंट सत्य है? मटेरियल वर्ल्ड इज इल्यूजन। कितने भक्त लोग कहते हैं कि स्टेटमेंट सत्य है, मटेरियल वर्ल्ड इज इल्यूजन। कितने भक्त लोग कहते हैं मटेरियल वर्ल्ड इज इल्यूजन? ये अक्सर मायावादियों का कहना है। मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट इल्यूजन, मटेरियल वर्ल्ड इज इल्यूजरी। भौतिक जगत भ्रम नहीं है, भौतिक जगत भ्रम करने वाला है। ये निर्भर करता है हम इसको कैसे देख रहे हैं, हमारी दृष्टि क्या है। अगर हम इस संसार की प्रत्येक वस्तु को भगवान से जुड़ा हुआ देखेंगे तो ये भ्रम नहीं है, लेकिन इसको हम अलग अपने भोग के लिए देखेंगे तो वास्तव में हम भ्रमित हो जाएंगे और चलायमान हो जाएंगे। बहुत चंचल, ये मन बहुत चंचल है, नए नए आइडियाज कहाँ। एक तरफ है आत्मा और एक तरफ है मन। हम आत्मा हैं लेकिन अपने आप को मन समझ रहे हैं। हम जब रोज प्रतिदिन जप करने बैठते हैं, हम देखते हैं कि मन कितना चंचल है, तरह तरह के आइडियाज, तरह तरह के विचार सब आते हैं हमारे पास, लेकिन वास्तव में हमारा इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इस सांख्य योग की विधि के द्वारा अगर हम जान जाएंगे कि हम अपने आप को मन से अलग करके देखेंगे तो हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और जब तक हम ये नहीं करेंगे हम संसार में हमेशा विचलित रहेंगे। तो ये श्लोक बता रहा है कि हमें दोनों की प्रकृति का अध्ययन करना चाहिए, कि आत्मा क्या है, यानी कि स्थाई जगत क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की क्या नेचर है, और मटेरियल वर्ल्ड में शरीर और मन, इनकी क्या नेचर है, इसकी क्या प्रकृति है। जब ये दोनों हम समझ जाएंगे तो हम जान जाएंगे इस समय क्या हो रहा है ना। और फिर जो इस भौतिक प्रकृति में जो कि चेंज परमानेंट है, यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होता ही रहता है, उस बदलाव के होते हुए भी हम विचलित नहीं होंगे। प्रभुपाद कहते हैं हम ऐसे विचलित हो जाते हैं जैसे किसी को भूत ने पकड़ लिया हो, है ना। हमारे जीवन में बहुत सी चुनौतियाँ आती हैं, हम सब अपने जीवन में इतनी चुनौतियाँ हैं हमारे जीवन में। कोई अगर कोई माता जी हैं और उनको भक्ति करनी है, घर में अनुकूल वातावरण नहीं है और वातावरण और ख़राब होता जा रहा है ना। किसी का नया नया विवाह हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है ना, सोचा क्या था, हुआ क्या, उसको बिल्कुल पागल सा हुआ पड़ा है ना। किसी ने नया जॉब ज्वाइन किया, नई शहर में चला गया, बिल्कुल बेचारा भटक गया, क्या हो गया है है ना, किसी के घर में अभी किसी की मृत्यु हो गई, किसी का भी नया नया पति और पत्नी ने लव मैरिज किया, बड़े खुश हैं, फिर संतान की उत्पत्ति हो गई, अब रोज समझ नहीं आ रहा क्या करें, कौन रात को जाके इसको संभालेगा, सारे सपने चूर चूर हो गए, पहले स्वीट बेबी अब बड़ा वो स्वीट है ही नहीं, रोता ही रहता है, तो बड़ी बुरी हालत है। ऐसे चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस हैं लाइफ के, हम दूसरे के चेंजेस से बड़े इसमें क्यों घबरा रहे हो, उसको मालूम होता है जिसके ऊपर गुजर रही होती है, वो पूरा हिल जाता है, ऊपर से लेकर नीचे तक हिल गया, सारे वैल्यू सिस्टम सब भूल जाता है, सारी फिलॉसफी भूल जाता है, क्या करना चाहिए कैसे, क्योंकि ये तो होता रहेगा, ये तो होता ही रहेगा, एक के बाद एक नए चैलेंज आएंगे, क्या करेंगे, और हमेशा ही ऐसे चलते रहेंगे तो कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो इस श्लोक को हम अच्छे ढंग से समझें, नास्तो विद्यते भाव, हम इसकी नेचर को जाने क्या है। ओके, अगर मेरे जीवन में बहुत चुनौतियां आ रही हैं, बहुत मुश्किल हो रही हैं, अपने आप को समझाएं, जब हर चीज चलायमान है, बदलने वाली है, ये परिस्थिति भी बदल जाएगी। हम क्या समझते हैं कि ये जो प्रेजेंट है ये एटर्नल हो गया, यही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा, फिर छोटा बच्चा रोज रात को जागेगा, मैं तो जागता ही रहूंगा, क्या पागल हो जाऊंगा मैं तो, ऐसे धंधा नहीं चल रहा, कुछ खाने को नहीं, क्या होगा, हम ऐसे सोचते रहते हैं और उसमें इतना सोच के पागल हो जाते हैं। लेकिन जानना चाहिए कि ये एटर्नल नहीं है, बदल जाएगा। याद करो जब हम पहली बार कोई इंटरव्यू देने गए थे, कितने टेंस थे, याद करो जब पहला लेक्चर देना था, याद डजंट मैटर काम पर रहे थे, है ना, याद करो जब पहली बारी कॉलेज में गए थे रैगिंग के लिए, कितना डर था, उन सब बातों को याद करो, निकल गया ना टाइम। इसी ढंग से जो अभी हमें तथाकथित मुश्किल समय लग रहा है, ये भी निकल जाएगा। कोई बोलेगा चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं तो जब से पैदा हुआ हूं ऐसे ही हूं, जब से दुर्भाग्यशाली, स्कूल में इतनी मेहनत करता था, फेल, अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, अच्छे कॉलेज में ब्रांच नहीं मिली, अच्छा जॉब नहीं मिला, फेलियर ही फेलियर, क्या करूं, सब ज्योतिषों के पास चला गया, सब कर्मकांड सब हो गया, सब बेकार, कोई होप ही नहीं है लाइफ में। आप बोले बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, वर्स ही वर्स होता जा रहा है। या फिर कोई बच्चा पैदा हो गया अपंग पैदा हो गया, कोई होप ही नहीं है उसके लिए। बोले क्या बदलेगा बताओ, आपकी गीता का श्लोक क्या बताती है, ना सतो विद्यते भावो, डॉक्टर कह रहा होप उसके हृदय में छेद है, अपंग है, क्या कर लेगा वो, अंधा है बचपन से, क्या हो सकता है उसका, तो क्या हुआ। अगर ज्यादा से ज्यादा ऐसा भी है, एक जीवन काल जा रहा है ना, हमारा जीवन तो कई जीवन काल से भी ऊपर है, हम सनातन है, एक जीवन काल हुआ ना, ज्यादा से ज्यादा हुआ भी तो एक जीवन काल गया, वो पिछले जन्म कर्मों का फल है, लेकिन ये भी सनातन स्थिति नहीं है जीवात्मा की, एक जीवन काल जाएगा। अच्छा ये भी है, लेकिन क्या करूं, मैं कॉल सेंटर में चला गया हूं, नाइट ड्यूटी लगी है, जब नहीं होता, आप कह रहे हो कि क्या करूं, इस कैसे, उससे मेरा जो श्रवण कीर्तन डिस्टर्ब हो रहा है, भक्तों का संग नहीं मिल रहा, छोटे बच्चे को संभाल रहे हैं, कुछ सब कुछ सिस्टम बिगड़ गया है, क्या करें। कोई बात नहीं, जो भगवान है बहुत ही अंडरस्टैंडिंग भगवान है, कृष्ण ऐसे नहीं है नियम बना दिए उसके बाद पता ही नहीं क्या हो रहा है ना, सख्त हैं बस, नहीं मेरे को यही करना पड़ेगा, मैंने बोला वही करो, ऐसा नहीं है, भगवान जानते हैं, अंडरस्टैंडिंग है, क्या परिस्थिति में आप कितना दे रहे हैं, गिव योर बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो आप बेस्ट कर सकते हैं आप करिए, जो दे सकते हैं दीजिए, है ना। तो इस ढंग से इन सिचुएशन से हम डील कर सकते हैं, या फिर जब ऐसे कोई हमारे जीवन में बदलाव आते हैं तो बहुत टेंस हो जाते हैं, बहुत घबराहट होती है, है ना, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में प्रभुपाद के उदाहरण को देखना चाहिए। प्रभुपाद वृद्ध अवस्था में 70 वर्ष की आयु में जा रहे हैं अमेरिका में जलदूत में, यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, कोई हृदय रोगी होता है उसको भी पृथ्वी घूमती हुई नजर आती है, लगता है प्रभुपाद अपने अनुभव से लिख रहे हैं। जलदूत में 2 हार्ट अटैक्स हुए, अमेरिका में भी गए, कई उनको स्ट्रोक्स पड़े, तो प्रभुपाद जब जलदूत में होंगे तो कितना सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा होगा प्रभुपाद को, है ना। तो प्रभुपाद ने जलदूत में कितना सुंदर कविता लिखा है, मार्किने भागवत धर्म। तो प्रभुपाद दिखा रहे हैं कि जब हम ऐसे इतना विषम परिवर्तन, कहाँ वृंदावन कहाँ पावरी स्ट्रीट, कोई जान पहचान नहीं है, कोई धन नहीं है आपस में, कुछ नहीं है, लेकिन प्रभुपाद इसका कैसा सामना कर रहे हैं, प्रभुपाद बिल्कुल असहाय अवस्था में है, हम भी असहाय होते हैं, और असहाय अवस्था में होकर पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर निर्भर है, पूर्ण रूप से भगवान मैं तो वहां पे हाथ ही कठपुतली हूं, जैसे आपने नचाना है नचाइए। फिर प्रभुपाद को अपनी योग्यता पे कोई विश्वास नहीं है, बोले मैं तो एक भिखारी हूं और तुच्छ भिखारी हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता, ना मेरे अंदर भक्ति है ना मेरे अंदर ज्ञान है, मेरा नाम भक्ति वेदांत रख दिया गया है, लेकिन मुझे भगवान के नामों में पूर्ण शक्ति है, पूर्ण विश्वास है। फिर बोले मुझे एक शक्ति दीजिए कि आपका जो संदेश है मैं इन लोगों तक पहुंचा पाऊं जो कि रजोगुण और तमोगुण में पूर्ण रूप से लिप्त है, कैसे ये आपके संदेश को समझेंगे, ये आपके ऊपर है। फिर बोले कि मुझे भागवतम के संदेश पे पूरा विश्वास है, क्योंकि जो निरंतर भागवतम सुनेगा उसका हृदय निश्चित रूप से बदलेगा। तो देखिए प्रभुपाद उनके जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है उसका कैसे सामना कर रहे हैं, सबसे पहले वो बिल्कुल असहाय पा रहे हैं अपने आप को, असहाय पाकर पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर निर्भर है, बिल्कुल विनम्र है। और तीसरा उनको पूरा विश्वास है भक्तों पर, भगवान की कृपा पर, भगवान के नाम पर और श्रीमद् भागवतम पर। तो हमारे जीवन में कुछ ऐसे बदलावपूर्ण परिस्थितियां आती हैं तो हमें भी इनका ही आश्रय लेना चाहिए, हरि नाम का आश्रय लें, भागवत का आश्रय लें, भक्तों का आश्रय लें। कोई भी जीवन की परिस्थिति हमें जप करने से नहीं रोक सकती, कोई भी जीवन की परिस्थिति हमें भगवान से प्रेम करने से नहीं रोक सकती, भागवत का शरण लेने से नहीं रोक सकते। श्रील प्रभुपाद भागवतम के पहले स्कंद के 12वें श्लोक अध्याय के किसी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम हमें वो अवसर प्रदान करती है जिससे हमारी चिंताएं भौतिक जगत से आध्यात्मिक हो जाए। भागवतम गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज अवर एंग्जाइटीज फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भागवतम की शरण लेकर जो हमारी चिंता होगी वो आध्यात्मिक हो जाएंगी, एंग्जाइटीज तो रहेंगी, वरीज तो रहेंगी, लेकिन वो सब के सब हम उसको आध्यात्मिक कर सकते हैं। तो इस ढंग से हम शरण लें। तो प्रभुपाद इतनी वृद्धावस्था में आकर उन्होंने इतना बड़ा जो जीवन में उनके बदलाव हुआ उसको कैसा उसका सामना किया, और ये नहीं कि वहां पर गए तो सब कुछ ठीक हो गया, उसके बाद नई नई चुनौतियों का और वहां पे सामना करना पड़ा, तो प्रभुपाद उसको कैसे उन्होंने झेला, प्रभुपाद ने उसको टॉलरेट किया, और देखिए उसके बाद प्रभुपाद ने हम सब पर कितनी कृपा की। इसी ढंग से हम देखते हैं जब भी हमारे जीवन में कोई बदलाव आता है तो हमारी परीक्षा होती है, हमें मालूम चलता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं, हमारी भक्ति कितनी परिपक्व है, कि थोड़े से बदलाव से हम विचलित हो गए, थोड़े से बदलाव से। जितनी जड़ें हमारी गहरी होंगी बड़े से बड़ा तूफान भी हमें हिला नहीं पाएगा। देखते हैं राजा चित्रकेतु जो कि विद्याधर लोक के राजा थे और अपने विमान में अपनी पत्नियों के साथ भगवान का गुणगान कर रहे थे, अचानक उनको श्राप मिल गया, उनकी बहुत बड़ी ऐसा कोई अपराध भी नहीं किया था, कहां विद्याधर लोक के राजा तुरंत असुर बन गए, असुर योनि में चले गए। नहीं क्या किया उन्होंने, रोते रहे, लेमेंट करते रहे, देखो मैं पहले क्या था, क्या हो गया, जो भी मिले उसको पकड़ के सुना रहे हैं, देखो मेरे साथ क्या हो गया, पहले मैं कहां था, देखो क्या मेरी हालत हो गई, कोई विष्णु ये कोई इंसाफ है ना, देखो कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे ना, क्या पार्शलिटी हो रही पॉलिटिक्स है, देखो हमारे साथ ऐसा हो जाए हम तो ये करते रहेंगे, देखो क्या हो रहा है, देखो जी क्या हो रहा है ना, क्रिटिसाइज करते रहेंगे, आरोप लगाते रहेंगे। बोले वृत्तासुर भी बन गए, कोई दिक्कत ही नहीं, भक्ति करते रहे, इंद्र से भी अच्छी उनकी स्थिति हो गई। ऐसे परीक्षित महाराज आखेट पर निकले और श्रृंगी ने उनको श्राप दे दिया। अप्रभुपाद कह रहे हैं श्राप दे दिया कि 7 दिनों के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी, हमारे शरीर में कोई फोड़ा हो और डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर बोले बायोप्सी कराओ कैंसर हो सकता है, मालूम चला कैंसर लास्ट स्टेज है, रिपोर्ट मिली है 1 महीना ज्यादा रह सकते, क्या होगा हमारे यहाँ, कांप जाएंगे, सोच ही नहीं पाएंगे क्या होगा। परीक्षित महाराज राजा पूरी पृथ्वी के छोटे से बालक ने बोला 1 सप्ताह के अंदर मृत्यु हो जाए, और परीक्षित महाराज के अंदर इतनी शक्ति थी उस श्राप को लेकर वापस कर देते और उसको भी श्राप दे सकते थे परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज माता के गर्भ में थे, भगवान ने स्वयं आकर उनकी रक्षा की थी, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था भगवान की आंखें गुस्से से लाल थी और भगवान लेकर अपना उससे पूरा गदा उठाकर उनकी रक्षा कर रहे थे, उनको भगवान को पुकारना था, भगवान आपने हमेशा मेरी रक्षा की है, ये श्रृंगी बालक के श्राप से भी रक्षा करो, भगवान रक्षा कर सकते थे। उन्होंने बोला नहीं ये तो बड़ा अच्छा अवसर है, 7 दिन के अंदर वाइंड अप कर लो, बस 7 दिन में वाइंड अप करना है, अरे वाह, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चलो फटाफट गंगा के तट पर भागवत श्रवण करेंगे, पूछेंगे ऋषियों से जिसकी मृत्यु 7 दिन में आने वाली है उसको क्या करना चाहिए, यानी कैसे बदला लेना चाहिए। कुछ नहीं बदला का सोचा ही नहीं, चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया, अपॉर्चुनिटी है भैया, वाइंड अप करो। पता नहीं इस पृथ्वी के राजा चक्कर में फंसा रहता मैं, सारे मेरे पिता भैया सब तो चले गए, मेरे को छोड़ गए यहाँ पे, ये तो बहुत अच्छा, निकलो यहाँ से, अपॉर्चुनिटी है। तो जो हमारे जीवन में बदलाव आता है वो बदलाव कृष्ण की कृपा से ही आता है, और अगर हम इसको कृष्ण की कृपा के रूप में देखेंगे एक बहुत सुंदर अवसर बन जाएगा हमारे उद्धार के लिए। अगर उस बदलाव को हम कोसते ही रहेंगे, क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, तो हम रोते ही रहेंगे, फिर अगली योनि में जाएंगे फिर रोते रहेंगे, फिर अगली योनि में जाएंगे फिर रोते रहेंगे। तो जो हमारे साथ बदलाव हो रहा है वो कृष्ण परम नियंता है, और वो बहुत ही दयालु हैं, भगवान हैं, हम सबसे प्रेम करते हैं, बिना उनकी इच्छा से कुछ हो नहीं सकता। तो भगवान जानते हैं मेरे जीवन में क्या कष्ट आ रहे हैं, उसको हम एज इट इज एक्सेप्ट करें, उस बदलाव से लड़ाई ना लड़े। हम तो अपना सब कुछ लगा देते हैं, एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं, नहीं होने दूंगा, अरे बुढ़ापा आ रहा है आने दो इसको, नहीं आने दूंगा, ये कैसे उसने कर दिया, हम पूरा जोड़ लगा देते हैं कि नहीं बदलूंगा मैं, कौन हिलाएगा मुझे, हिलना पड़ेगा, नदी है, वेव्स आएंगी, हिला देंगे सब कुछ, सब चले गए, हिटलर, नेपोलियन, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, वो सब चले गए, शॉर्ट डेड, सब जिसने मारा वो भी चला गया, जो जो सब चले गए, सदाम हुसैन और ये सब चले गए, कितना बड़ा बड़ा सबका वो था, सब ने कहा नहीं हिलूंगा नहीं हिलूंगा, कुछ साल तक रहे हिले गए सब। तो हम किस खेत की मूली, हम भी हिल जाएंगे ऐसे। तो जो हो रहा है उसको हम रेजिस्ट ना करें, इसको भगवान की कृपा माने और उसके अनुसार अपने आप को देखें, दोनों की प्रकृति को समझे। लेकिन इसमें बड़ा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, ऐसा नहीं किसी को लूज मोशन लग के बोले भगवान कृपा हो गई अब 7 दिन के अंदर डिहाइड्रेशन होकर मर जाऊंगा, चलो कोई इलाज नहीं करूंगा मैं, परीक्षित महाराज बन गया, हरे कृष्णा, अरे जस्ट लूज मोशन लगे, हरे कृष्णा बोल ही नहीं पाओगे, जो होना होने दो, बस ये भगवान का सिग्नल आ गया, मैं जाने वाला हूँ, शरीर छोड़ने वाला हूँ, ऐसा नहीं। प्रभुपाद कहते हैं डू द नीडफुल, ऐसा नहीं अब ये सब सुन लिया, ना सतो विद्य दे भावो ना भाव विद्य देता, ये तो बदल जाना है, पढ़ाई क्यों करूं बदल जाना है, जॉब क्यों करूं बदल जाना है। कई बार ऐसे लोग होते हैं सूक्ष्म भाव सुनते हैं, हमारे ऐसे भक्त थे, 7 डे सेशन अटेंड किया, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, जब ऑफिस जाते थे ऑफिस अंदर से बंद करके चेयर पर नहीं बैठते थे, नीचे बैठ गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, वाह कितना आनंद है प्रभु, जीवन बदल गया, जीवन बदल गया, कुछ और नहीं सोचता, केवल कृष्ण केवल कृष्ण। 3 महीने बाद व्यक्ति गायब, क्योंकि इतने बदलाव होंगे, इतने बदलाव होंगे, इतने लॉसेस हो गए, सब हरे कृष्ण छूट गया। इंटेलिजेंटली देखना क्या मतलब है इस श्लोक का, ये भौतिक जगत बेकार का नहीं है, हर वस्तु कृष्ण से संबंधित है, इसको कैसे कृष्ण की सेवा में लगाना है, है ना। तो मैं कैसे आजीवन कम से कम 16 माला का जप करता रहूं, 4 नियमों का पालन करता रहूं, भक्तों की शरण में रहूं, कैसी भी भौतिक परिस्थिति क्या ना हो मैं इसको करता रहूं, लेकिन भौतिक परिस्थितियों से कैसे डील करूं इंटेलिजेंटली, उसको मैं जस्ट डू द नीडफुल। और जब परिस्थितियां बहुत बहुत अपना विकराल रूप धारण कर लेती हैं तो हमें टेंस नहीं होना है, घबराना नहीं है, उस समय क्या होना है, अपने आप को इंटेंस करना है, है ना, टेंस की जगह अपने आप को इंटेंस कर देना है। इंटेंस किस में करना है, जप में, और ध्यान पूर्वक जप करें और अच्छे ढंग से भागवतम की शरण लें, यही हमें उद्धार करेंगे हमारा, उन सिचुएशन से लड़कर और उस सिचुएशन से फ्रस्ट्रेट होकर नहीं, और एट द सेम टाइम जो हमारे जीवन की परिस्थिति है उसके लिए हम नीडफुल करते रहे, ये नहीं कि उसको इग्नोर करते रहे, जिससे कि हमारी स्थिति और भौतिक परिस्थिति से खराब होती रहेगी तो हमारे पे प्रेशर और बढ़ता रहेगा, क्योंकि अभी हम मुक्त अवस्था में नहीं हैं, हम बद्ध अवस्था में हैं, शरीर के यापन के लिए हमें धन चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए चाहिए। तो जो हमारे जीवन में बदलाव हो रहा है उसके लिए हम नीडफुल करते रहे, जो हमें करना है मिनिमम हम करते रहे, और इस परिस्थिति से डील करने के लिए अपने आप को इंटरनली इंटेंस करते रहे, बहुत ध्यानपूर्वक हम जप करें। देखिए इस ज्ञान से हमें जो हम जप करेंगे उसमें बहुत लाभ मिल सकता है, जब हम जप कर रहे हैं तरह तरह के विचार हमें सताते हैं, पुराने पुराने मित्र, पुराने पुराने शत्रु याद आ जाते हैं, है ना, और एक अजीब अजीब से कम्बिनेशन भी हो जाते हैं कई बार, और चल रहा होता है जब हमारा और एक तरफ से वो चल रहा होता है। हम देखें क्या कि ये मन है और मुझे किस पे कंसंट्रेट करना है, सत पर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मन की प्रकृति है कि मुझे कृष्ण से दूर ले जाए, मैं ऐसा नहीं हूं, मेरा संबंध तो हरि नाम के साथ है, ये मन मुझे हरि नाम से दूर ले जा रहा है, इसलिए मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। मन बोलेगा चलो नहीं जाऊंगा, वापस खींच कर फिर हरि नाम पे आ जाऊंगा। फिर मन बोलेगा अच्छा, कभी मित्र बन के, कभी शत्रु बन के, कभी क्या करके हमें किसी ना किसी ढंग से बहला फुसला के अपने साथ ले जाने का प्रयास करेगा, लेकिन हम जान जाएंगे ये मन की चाल है, तो हमेशा हम पूरे जप में संघर्ष करते रहेंगे। नहीं तो क्या करते हैं, शुरू शुरू में एक दो संघर्ष के बाद हम मन को सरेंडर करते हैं, जहां ले जाना ले जाओ, चल ये तो चलता है रहेगा बैकग्राउंड में, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम, और मैं कहां कहां कहीं घूम के आ गया, कहीं मैंने डील सेटल कर ली, कहीं प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन कर दिए, कहीं प्रोग्राम बना लिए, कहीं शेड्यूल्स बना लिए, सब कुछ हो गया मेरा काम फर्स्ट क्लास, और बैकग्राउंड में चल रहा है हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। लेकिन जब हम जान जाएंगे नहीं, ये मन है जो मुझे भटका रहा है और मैं ऐसा नहीं हूं, मेरा संबंध हरि नाम के साथ है, तो फिर हम इसको तुरंत पहचान जाएंगे। दोनों की प्रकृति को समझें, सत क्या है, असत क्या है, एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, रिलेटिव ट्रुथ क्या है, और रिलेटिव ट्रुथ से कैसे संसार से हमें डील करना है। केवल नीडफुल अपनी ड्यूटी कर दें, लेकिन अपने जो जड़ें हैं वो इस आध्यात्मिक सत्य में गहरी करते रहें। तूफान हर एक की जिंदगी में आएगा ही आएगा, अभी छोटी छोटी हवा चल रही है जो कि हमें सकता है बहुत मधुर लग रही हो, लेकिन तूफान का रूप धारण करने वाली है, सबके जीवन में कोई ना कोई तूफान आएगा, और फिर मालूम चलेगा हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं, और फिर हम बह जाएंगे। और रोज हमें मालूम चल सकता है हमारी जड़ें कितनी गहरी है जब हम जप करने बैठते हैं, कितना हम ध्यान देते हैं, छोटी छोटी बातें हम कितना विचलित हो जाते हैं, किसी ने हमें हंसकर हरे कृष्ण नहीं बोला, पूरा जप खराब हो गया पूरा, किसी हमारे मनपसंद कोई चीज नहीं हमें खाने को मिली, हम उदास हो गए, है ना। कितनी छोटी बातों से हम विचलित हो जाते हैं, और जब मृत्यु जैसा बड़ा परिवर्तन होगा तब हमारी क्या स्थिति होगी, जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना होगा तब क्या स्थिति होगी हमारी, छोटी छोटी बातों से हम इतने विचलित हो जाते हैं। तो अपनी जड़ों को हम गहरा करें जिससे कि हम विचलित ना हो। तो हमें धन्यवाद देना चाहिए हिरण्यकश्यपु जी का कि इतना सुंदर संदेश हिरण्यकश्यपु हमें दे रहे हैं कि जिस संग से नदी के तट पर खड़ा हुआ वृक्ष बहती हुई नदी में चलायमान प्रतीत होता है, उसी प्रकार से आत्मा स्थिर है, लेकिन प्रकृति के तीन गुणों के संपर्क में आने के बाद, अपनी पहचान मन से करने के बाद, हम अपने आप को आत्मा न समझकर चंचल मन समझ रहे हैं, और हमें लगता है कि हम भी चलायमान हैं, लेकिन हम स्थिर हैं, अचल हैं। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है भैया?
मुझे तात्पर्य में, और आपने इसके व्याख्यान में भी जैसे बताया, श्लोक के उदाहरण दिए भागवत गीता से, कपिल मुनि सांख्य योग से, और ये पूरा सिद्धांत जो है सांख्य है, जैसे कि जब हम ऐसा अक्सर ऐसा सुनते हैं, ये खड़ा है, ये चल रहा है, मैं रुका हुआ हूँ, सब आगे बढ़ रहा है, तो कुछ देर सुनने के बाद ऐसा लगता है बड़ा अच्छा लग रहा है, पर करना क्या है? तो और कई बार, और वो थोड़ा सा जब हमारा ध्यान अच्छा होता है, थोड़े खुश नसीब होते हैं, तो हमें ये बात समझ आती है, ये तो पूरा ही ऊपर से निकल जाता है कि जब ये ऐसे शांति सुनते हैं कि प्रकृति के गुण कुछ कर रहे हैं और वो दिखाई नहीं दे रहे, अब क्या हो क्या रहा है, बेसिकली मन भाग रहा है, मन रुक रहा है, मन अलग है, तो उस वक्त बड़ा अजीब सी स्थिति लगती है कि अभी क्या करें, इसका मतलब मन भागता रहेगा, मैं रुका रहूँगा, मैं उसके पीछे में भाग जाऊँगा, तो अपने आप को कैसे, मतलब करना क्या है, बड़ी विकट स्थिति लगती है।
नहीं, सांख्य योग, प्रभुपाद कहते हैं सांख्य योग का मतलब है फाइंडिंग आउट द रूट, और भक्ति योग का मतलब है वाटरिंग द रूट। तो हमें सांख्य योग के माध्यम से जड़ को निकालना है कि हो क्या रहा है मेरे साथ, ये मालूम तो चले। जब हम एक डॉक्टर के पास भी जाते हैं इलाज कराने के लिए, तो अगर कोई बुद्धिमान मरीज होगा वो पूछेगा डॉक्टर साहब हो क्या रहे, बताओ तो सही मुझे, तो बताएगा आप जरा बीपी की दवाई ले रहे हो, इससे बीपी अचानक लो हो जाता है, इसलिए शरीर में कमजोरी आती है, तो देख लिया करो, जब बीपी इतना हो तो फिर मेडिसिन छोड़ दिया करो। तो पेशेंट समझदार हो जाते हैं, अच्छा तुम्हें घबराता नहीं है, जब पहली बार उसको पता ही नहीं होता क्या हो रहा है तो बहुत घबरा जाता है, डॉक्टर साहब चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, मैं लगा मैं अभी गिर जाऊंगा, कुछ नहीं, थोड़ा सा बीपी हाई हो गया, घबराओ मत, अच्छा बीपी हाई हो गया, मालूम चल जाता है तो वो समझ जाता है बात को। इसी ढंग से हमें मालूम चल जाएगा बड़ी विचलित हो रही है, मैं बहुत घबराहट हो रही है, नया नया शादी हो गया, नया नया जॉब हो गया, मैं बड़ी घबराहट हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ये मन है, ये मन ऐसे ही करता है कि घबराने की बात नहीं है, है ना, ये चंचल है। अचल कैसे, ऐसे में विचलित परिस्थितियों में हमेशा क्या करो, जो अनचेंजेबल है, जो कभी चेंज नहीं होता, उस पर ध्यान दो। कृष्ण के साथ मेरा क्या संबंध है, कृष्ण के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, उस पर ध्यान दो, उस कर्तव्य को पूरा करो, तो आपके आसपास जो भी बदलाव हो रहा है वो आपको प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं आपके साथ क्या हो रहा है तो आप विचलित रहोगे। ठीक है, एक प्रश्न पूछो।
हरे कृष्ण। संसार में नित्य प्रति परिवर्तन होते रहता है, शरीर, दुनिया, परिस्थितियाँ, तीन जितने परिस्थिति हमारे अंदर में परिवर्तित होते हैं, तो कभी कभी क्या प्राय से सुनते हैं कर्म के द्वारा, तुमने ऐसे कर्म किया इसलिए ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। मगर कभी कभी कहा जाता है कि भाग्य के द्वारा, तुम्हारा भाग्य में ऐसा था इसलिए ऐसे हुआ। तो ये परिवर्तित भाग्य के द्वारा हो रहा है या कर्म के द्वारा? कर्म और भाग्य, भाग्य में क्या संबंध है, क्या उनमें संपर्क है? भाग्य अलग है कि कर्म अलग है, इससे क्या
विषय? अच्छा प्रश्न है आपका। कर्म नित्य नहीं है और कर्म फल से जो एक्यूमुलेट हो जाता है, कई जन्मों में हमारे कर्म फल जो एक्यूमुलेट हो गए वो भाग्य है, संचित कर्म फल हमारा भाग्य बन जाता है कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और भाग्य भी परिवर्तनशील है, भगवान की भक्ति के द्वारा हम अपने फेट को भी बदल सकते हैं, भाग्य को भी बदल सकते हैं। तो संचित कर्मों का फल हमारे भाग्य को बनाता है और उसको हम भक्ति के माध्यम से बदल सकते हैं।
प्रैक्टिकल रूप में कैसे संभव है?
बड़ा अच्छा प्रश्न है कि अपनी वरीज को स्पिरिचुअल कैसे बना सकते हैं, और भागवतम बताया गया वो माध्यम है। तो जब हम भागवतम की श्रवण ग्रहण करेंगे तो शिला प्रभुपाद जी की क्या वरी रहती थी? शिला प्रभुपाद जी जलदूत में हैं, उनकी ये वरी नहीं है कौन रिसीव करने आएगा मुझे, मेरा प्रसादम कहाँ पे होगा। हम यहाँ दिल्ली से जा रहे होते हैं बॉम्बे में, रास्ते में 10 फोन करते हैं, प्रभु प्रसाद लेके आ जाना, हमारा यही होता है ना। और देखते रहते लास्ट में कोच नंबर ये है, सीट नंबर ये है, 2 मिनट की गाड़ी रुकेगी, चूकना मत, चूक गया तो मैं गया। इतने 10 कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, फटाफट लेके बचाते थे, शांति में यहाँ। प्रभुपाद कोई वरी नहीं थी, प्रसादम कहाँ पाऊंगा, रहूंगा कहाँ पे, रिसीव करने कौन आएगा, है ना, मेरे को हार्ट अटैक हो गया मेरी तो बुरी हालत हो जाएगी, बॉयल खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कितनी चिंता रहती है हमारे को, लोग क्या बोलेंगे, मैं धोती कुर्ता में घूमूंगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, इंग्लिश भी को समझ में नहीं आएगी, कितनी चिंता होएंगी, होनी चाहिए अगर हम जा रहे हों ऐसी परिस्थिति में। नहीं प्रभा, तो क्या चिंता है कि भगवान आपके संदेश को ये लोग कैसे समझेंगे, मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, देखो ले तो जा रहे हो यहाँ पर, लेकिन मैं आपका जो अभिप्राय है कैसे पूरा कर पाऊंगा, मुझे शक्ति दीजिए, ये चिंता है। ये भी तो चिंता है, प्रभा ऐसे रिलैक्स करके नहीं बैठे आराम से, वो मायावादी कंसेप्ट है, हंसते रहो बस, आसपास कुछ हो रहा है चुपचाप रहो, कुछ नहीं होगा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या अहम ब्रह्मास्मि, जो हो रहा है आसपास, यार कोई अगर थप्पड़ मार गया तब वो खुलता है उसको, है ना। एक बार थे उधर भक्ति भक्त भानु महाराज बता रहे थे, जो मायावादी सन्यासी आते थे वृंदावन में खिचड़ी लेने, बैठ गए सब, सबको खिचड़ी दी, उसको खिचड़ी नहीं दी, एक बार ही हो गया, 2 बार ही रह गया, उसको बड़ा गुस्सा आया, क्या है तरीका क्यों नहीं खिचड़ी दे, बोले ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ये सब मिथ्या है, तो आप अपने आप को इतना गुस्सा कर रहे हैं, तो ये मायावादी कंसेप्ट है। लेकिन जो भक्त है वो चिंता करता है, लिविंग बींग है, इच्छा होगी चिंता होगी कैसे भगवान को संतुष्ट करना है, कैसे भगवान की चिंता को कम करना है, ये हमारी चिंता है। ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की आनंद कोटि वैष्णव वृंद की ग्रंथ श्रीमद भागवतम की गौर प्रेमानंद है।